بچوں میں نظام تنفس کے مسائل اور بڑے یہ اہم ایک طرح سے ہم بول سکتے ہیں موضوع ہے, تو یہ نظام تنفس تھوڑا پہلے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں.
جی دیکھیں, جو نظام تنفس ہے یا ریسپائریٹری سسٹم ہے, ہم اس کو دو حصوں میں کلینیشنز اس کو کرتے ہیں, سپریٹ کرتے ہیں. ایک ہے اپر ریسپائریٹری ٹریک اور ایک ہے لوور ریسپائریٹری ٹریک. یعنی کہ اپر سے مراد ہے کہ جو کہ آپ کی گردن سے اوپر ناک ہے, سائنسز ہیں, یہ جو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ناک کے ساتھ یہ چیکس کے اوپر یہ اور تھوڑا سا اس طرف آنکھوں کے اوپر یہ سارا سائنسز کا ایریا آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد منہ میں تالو ہے, گلے کے پٹھے ہیں, اور پھر اس کے بعد ونڈ پائپ ہے جسے ٹریکیا جس سے سانس لیتے ہیں. پھر اس کے بعد لوور ریسپائریٹری ٹریک میں سانس کی نالی, پھر لنگز آ جاتے ہیں, دونوں دائیں پھیپھڑے آ جاتے ہیں دائیں بائیں طرف کا, اور پھر ان کے اندر فردر برونکیول اور الویولائی سارے آ جاتے ہیں.
جی آزائیں آ جاتے. اچھا تو مدیہ خالد, آج کا جو موضوع ہے تنفس کے جو مسائل ہیں بچوں میں, کیا یہ اوپر والے حصے میں ہے یا نیچے والے حصے میں, ہم دونوں پر گفتگو کریں گے.
دیکھیں جو ہے ہم آج اوپر والے حصے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت سی ہر ایک لیول پہ جہاں جس جگہ کا انفیکشن ہے اس جگہ کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. لیکن اب آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ ڈیولپنگ کنٹری کا ایشو نہیں ہے انفیکشنز, یہ ڈیولپڈ کنٹریز کا بھی ہے. اور بچوں میں جو بہت سی اموات جو ہیں اس کی ریزن جو ہے موسٹ کامن یہی ریسپائریٹری النس ہیں یا ریسپائریٹری انفیکشنز ہیں. اور یہ ہمارے اگر آپ دیکھیں تو اپر ریسپائریٹری انفیکشنز کے اندر جو ہے ہمارے ایک ایک حصے کے آ جاتے ہیں انفیکشنز, اور اس میں جو دو چیزیں ہیں جن وجہ سے ہوتا ہے, ایک وائرل ہے اور ایک بیکٹیریل ہے, اور بہت ریئرلی انجریز ہیں, یعنی کبھی کوئی انجری ہو جائے تو اس کی وجہ سے
جی
تو وہ علیحدہ ٹرامیٹک کوئی پرابلم آ جائے تو اس سے ہے. اب جو ہمارے فار ایگزامپل اگر ناک کے حد تک جو ہمیں روٹین میں ہم دیکھتے ہیں وہ نیزوفرینجائٹس ہے, ناک کا انفیکشن ہے, فیرکس کا انفیکشن آ جاتا ہے. اس میں موسٹ کامنلی جو ہے وہ سیزنل انفیکشنز, سیزنل وائرسز جو ہیں وہ, جیسے رائنو وائرس ہے, وہ عام ہمارے جو ہی موسم تبدیل ہوتا ہے گرمی سے سردی, سردی سے گرمی کی طرف آتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ٹمپریچر کے چینج ہونے سے ایسا وائرل انفیکشن
آنے کا پیغام دیتا ہے.
بالکل, تو اس طرح سے بچوں کے اندر جو ہے وہ انفیکشنز آتے ہیں, اور وہ ٹائم تھوڑا ٹائم کے لیے ہوتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اب اس میں اگر تو اگر بچے کو ارلی اگر بخار نہیں ہے لیکن بچہ تھک رہا ہے اور بچے کو تھکاوٹ ہو رہی ہے, گلا صحیح طرح نہیں, اس کی آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہے, تو وہیں پہ مدر کو چاہیے کہ فوراً اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے اور دیکھے رول آؤٹ کرے کہ کیا پرابلم ہے. یہ جو نیزوفرینجائٹس تو سمپل سی ہے, اس میں کوئی اتنی یہ ٹریٹیبل ہے. اگر وائرل ہے تو وہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ اور ڈیز میں وہ ٹریٹ ہو جاتی ہے, تین دنوں میں, پانچ یا سات دنوں کے اندر ہی, اور ہوم ریمیڈیز کے ساتھ ہی ہو جاتی ہیں. تو اگر اس کی تھوڑی سی کمپلیکیشن بڑھے تو یہ پھر فیرنجائٹس ہو جاتی ہیں, اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے, بخار زیادہ بڑھ جاتا ہے, چلز شروع ہو جاتی ہیں, بچہ زیادہ لیتھارجک ہو جاتا ہے, پیلا لگنا شروع ہو جاتا ہے, آواز میں اس کو روتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے اس کو درد محسوس ہوتا ہے,
دقت
ہوتی ہے اسے, اور جو اس کے پٹھے وغیرہ ہیں وہ بھی کھینچ جاتے ہیں, وہ زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. پھر اس میں پھر ڈاکٹر میڈیسن یا عموماً اینٹی بایوٹک سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے, اور اگر مدر ان کو اینٹی بایوٹک تھراپی پوری نہیں کرتی ہے تو وہ کمپلیکیشنز میں جا سکتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ریٹرو فرینجیل ایپسس کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, اپنی گفتگو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے, کیونکہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے کورس کو ہم پورا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے. موسم کے ساتھ کیا یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں تنفس کے حوالے سے, تو بتائیے کہ صحیح ہے یا نہیں, اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
بالکل, موسم کا بہت دار مدار ہے. دیکھیں موسم چینج ہوتا ہے, ٹمپریچر چینج ہوتا ہے, ٹمپریچر چینج ہوگا, ہیومیڈیٹی چینج ہوگی, یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اگر بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز کو تھرائیو کرتے ہیں وہ ان سے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح جیسے بہت شدید دھوپ ہو, بہت گرمیاں شدید ہوں تو ریسپائریٹری انفیکشنز کم ہو جاتے ہیں, ونٹرز آ جائیں تو ریسپائریٹری انفیکشنز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈسٹ ہے, एलर्जेंस हैं, स्मॉग है, अब स्मॉग कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का, और हमारी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन से दरख्त कट रहे हैं, उसकी वजह से स्मॉग एक्सीडेंट्स ये सब बढ़ रहे हैं. लेकिन सेहत और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, बच्चों का जो है निज़ाम तनफ्फुस, ये सब असरअंदाज हो रहा है. देखिए ये अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं आप इनहेल करेंगे तो लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली आपके लिए ऑक्सीजन के साथ साथ आपके लिए खून नहीं बना पाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रीन ग्रीन तहा की अच्छी होनी चाहिए. तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट है,
बिल्कुल हो सकता है मौसम की वजह से भी.
बिल्कुल
जी. अच्छा, हम लोग गुफ्तगू कहे थे और गुफ्तगू के दौरान मुझे याद है मैंने वक्फे से पहले एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सी ऐसी खवातीन या बहुत से पढ़े लिखे अफराद, सबकी मैं बात कर रही हूँ, खवातीन ही क्यों उसमें शामिल हों, एंटीबायोटिक ले लिया डॉक्टर ने दिया है जनाब कि आपको जो है इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो भी आपको अभी हुआ है इससे आपको जो है निजात मिले. ठीक है, दो दिन खाया, तबियत बेहतर हुई, रख दिया साइड पर कि ठीक है हम ठीक हो गए. कितना असर हो सकता है इसका उस बीमारी पर?
हाँ देखें, अगर जिसने ठीक होना होगा पूरी थेरेपी से वो ठीक नहीं होगा. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक फेलियर जो हमारे हम देख रहे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि लोग देखते हैं कि अगर एक दिन के बाद या दो दिन के बाद इस्तेमाल के बाद आपकी तबियत ठीक हुई है, वहीं पे वो उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं. जबकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो अगर ठीक हो रहा है, मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, उन्हें नहीं मालूम कि क्लिनिकली क्लियरेंस जो है कि जहाँ पर हम कहेंगे हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं या बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, उसके लिए ज़रूरी अगर डॉक्टर ने कहा इसको 5 दिन इस्तेमाल करानी है या 7 दिन इस्तेमाल कराना है और फॉलोअप करना है तो उसको मुकम्मल करें.
बिल्कुल.
देखिए बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, उसमें इम्यूनिटी वीक है, उसकी जो सांस की नालियां हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट हैं और सेंसिटिव हैं, और उसका जो है बीमारी से निकलना वो इतनी जल्दी नहीं निकल सकता जितना बड़ा निकल सकता. उसकी एक्सरसाइज नहीं है, उसके खाने की सोर्सेज नहीं इतने बेहतरीन जो कि बड़े के हैं. वो मे बी बच्चा सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट है या एक दो और चीज़ों पे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है वो आप उसको पूरा मुकम्मल करें.
सही, ठीक है, तो उसको मुकम्मल करना ज़रूरी है और ये मेरे ख्याल से खास पैगाम होना चाहिए इस प्रोग्राम की तरफ से. अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर देख रही थी और ये सवाल हमारे लिए सबीहा या साहिबा इनका नाम है हमारे लिए भेजती हैं और लिखती हैं कि इनके बच्चे को सर्दी के मौसम में हमेशा नाक से इनके पानी बहता रहता है और जिस तरह इन्होंने लिखा है कि पूरे इस मौसम में इनको ये मसला रहता है इनके बेटे को, तो क्या किया जाए इसके लिए?
अगर इनके बच्चे के नाक में पानी, इसका मतलब है कि ये मुझे जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से लग रहा है मे बी वायरल हो, और अगर मतलब वो अपनी इसके ऊपर डिपेंड करता है इन्होंने इम्यूनाइजेशन बच्चे की है कि नहीं की है, और सिंपल अगर पानी निकल रहा है और बुखार नहीं है और कोई अलामत नहीं है तो बहुत श्योर कि उसको वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं मौसम के बदलने से, और उसका बेहतरीन इलाज इम्यूनाइजेशन है.
सही, उस है।
उन्हें चाहिए कि इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीनेशन है वो अगर नहीं हुई है वो जाकर किसी भी क्लिनिक से और वो अपना बच्चे के करवा लें.
अच्छा, बर वक्त अगर इन तनफ्फुसी जो मसाइल हैं बच्चों में या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इन्फेक्शंस हैं इनका बर वक्त जो है इलाज ना किया जाए, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आ सकती हैं बच्चे की जिंदगी में या नहीं?
देखिए ये लीथल है. अच्छा. ये लाइफ थ्रेटनिंग है. और अगर मैं इसमें एक दो चीज़ें करती हूँ, बताती हूँ आपको, जैसे कि एपिग्लोटाइटिस है, एपिग्लॉटिस एक पट्ठा है जबान के नीचे, और वो पट्ठा अगर स्वेल हो जाए इन्फेक्शन से तो वो ना सिर्फ बच्चे की सांस की नाली को ब्लॉक करेगा बल्कि खुराक की जो नाली उसको भी ब्लॉक कर देगा, रेस्पिरेशन बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगी और वो बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है इसमें. और कॉम्प्लिकेशंस अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो कई दफ़ा बुखार की भी अलामत नहीं आती हैं और बच्चा निढाल होता है, आवाज़ भी नहीं निकाल रहा होता और माँ को पता भी नहीं चलता कि वो कॉम्प्लिकेशन कितनी भर गई है बच्चे की, और अमूमन ये कहते हैं कि सांस बंद होने से बच्चे की मौत हो गई है.
अच्छा.
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का अगर छोटी सी भी आपको लगता है कि सांस में मसला आ रहा है आप उसको फ़ौरन जो है परस्यू करें, उसको फ़ौरन बर वक्त उसका जो है इलाज करें, वरना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके सीरियस हैं. क्योंकि देखिए मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हमारे जो गले का है हमारा जो मुंह है उसमें हर चीज़ की नाली खुल रही है, आंखें, नाक, कान, मैदा, इन तमाम की नालियां जो हैं हमारे मुंह के अंदर है, और अगर ओरल हेल्थ अच्छी है, साफ़ सुथरा है, तो बच्चे को जो है कम से कम चांसेस हैं. तो इसलिए इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर मदिया, एक चीज की देखिए, एक माँ जो है वो घर में पहले टारगेट करती है हर बीमारी को कि हाँ मसला है तो फिर डॉक्टर से रुजू किया जाता है। मैंने देखा अक्सर बच्चों के जो सीने पर हाथ रखा जाए तो अंदर से गूंजने की आवाज आती है, अब वो चाहे खिशखिश की आवाज हो या फिर जो है सांस की आवाज हो, तो क्या अलाइम है, क्या ये उनमें से एक अलाइम है या नहीं?
बिल्कुल है। देखिए जो अर्ली अलामत हैं उनको उनके बारे में माओं को पता होना चाहिए। जैसे कि उसमें अगर आप देखें तो बच्चे को सांस में रुकावट आएगी, आप देखेंगे वाइट कलर की जो है एक नाक बंद होगा, ब्लॉक होगा, बच्चा सांस सही तरह से नहीं लेगा। फिर आवाज़ की भी, जो बच्चे की सांस की आवाज़ है वो भी वीजिंग की तरह होगी,
सी टी सी आएगी
या फिर जैसे कि हॉर्सनेस है, रफ है, वो रोना भी चाहेगा तो रो नहीं पाएगा, मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी,
उस वॉल्यूम के साथ नहीं रो पाएगा,
वॉल्यूम के साथ। बिल्कुल, माओं को पता है कि मेरे बच्चे, और कई दफ़ा ये अलामत जो हैं बगैर बुखार के होती हैं, तो माओं को ये माएँ समझती हैं कि बुखार होगा तो बच्चा बीमार होगा, तो ये इसका इंतज़ार नहीं करना। और फिर रेडनेस होगी, अगर आप देखेंगे तो चेहरा काफ़ी रेड हुआ होगा, स्वेलिंग होगी, आंखों में पानी बहुत ज़्यादा आएगा,
ठीक है,
आंखें जो हैं वो बिल्कुल ब्लर होंगी, आप देखेंगे बार बार उसको बच्चे की आंखों को साफ करने की ज़रूरत होगी, और बुखार आएगा जाएगा। फिर अगर आप बच्चे के मसल्स को भी पकड़ के देखेंगे तो मसल्स स्टिफ हुए होंगे, तो ये एक ऐसे अलामत। फिर पेट के ऊपर भी हाथ रखेंगे तो कई दफ़ा पेट भी जो है वो सख्त हुआ होगा, तो ये ऐसे अलामत हैं जिनसे पता चलेगा कि बच्चे को जो है वो सर्दी की
शिकायत है। आप टारगेट कर सकते हैं
जी, बिल्कुल।
अच्छा, खाना निगलने में कोई मसला होगा बच्चों को?
बिल्कुल, खाना निगलने में भी मसला है, वो दूध नहीं पिएगा, दूध जो है निपल नहीं लेगा, गले में दर्द होगा, और हाथ भी लगाएंगे तो बच्चा जो है वो दर्द की मतलब क्राई करेगा, रोएगा, तो इस तरह से है।
अच्छा डॉक्टर मदिया खालिद, अपनी गुफ्तगू में आपने इशारा किया कि होम रेमेडीज भी इस हवाले से मौजूद हैं जो हम पहली स्टेजेस में घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बताइए उस हवाले से।
देखिए जब तक आपके पास आप डॉक्टर तक नहीं पहुंचते तो उससे पहले तक आप कर सकते हैं, और बहुत सी अच्छी हैं। जैसे कि अगर तो बच्चा 6 महीने से बड़े का है तो आप बच्चे को गर्म पानी में शहद डाल के और लीमू डाल के, लीमू बहुत बहुत अच्छा है, लीमू के ऊपर मिथ क्रिएट है कि भाई खट्टा है तो गले के लिए खराब, ऐसा नहीं है, लीमू बेहतरीन है बच्चे के, लेकिन 6 महीने से बड़े का ना, 6 महीने के बाद का, आप उसको गर्म पानी में शहद डालें, लीमू दें, और वो बेहतरीन है। और अगर थोड़ा सा और बड़ा है, खा पी सकता है, तो प्रोटीनियस सूप, चिकन सूप, गार्लिक, लहसुन और अदरक के इस्तेमाल के साथ। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है ये होम रेमेडीज़ के अंदर, आप विक्स वेपर अप है सीने के ऊपर, वो लगाएं, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, और हॉट वाटर बाथ है वो, विटामिन सी बहुत बेहतरीन है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं,
मौसम
भी है, कुदरत ने आपके लिए बनाए हैं, कुदरत ने आपके लिए रेमेडीज,
मौसम उसका इलाज भी,
बिल्कुल कुदरत ने आपके लिए ये ट्रीटमेंट दी है। और इसके अलावा जो है प्रोबायोटिक्स बड़े अच्छे हैं, जैसे दही का इस्तेमाल है, दही ना सिर्फ आपको कैल्शियम देगा, प्रोटीन देगा, तो इसमें चूंकि एकदम कुव्वत मदाफत गिरती है, तो ये होम रेमेडीज आर द बेस्ट, ये आप इस्तेमाल बच्चे के साथ कर सकते हैं। और अगर बच्चा जो है वो 6 महीने से कम का है तो कोशिश करें वो दूध पिए, वो माँ का दूध पिए, जो भी अगर इन्फेंट फार्मूला पे है तो वो दूध उसका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इस हालत में, ये ना हो कि वो इम्यूनिटी कम हो और मजीद उसकी बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चली जाए। और उसके बाद फौरन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको जो भी दवाई दी है आप मुकम्मल वो कोर्स करें।
अच्छा, एक चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि भाई बच्चा जो है इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे को नहलाना नहीं है, नहलाओगे तो इन्फेक्शन शदीद हो जाएगा, या जो सर्दी का मौसम है तो भाई क्यों नहलाया जाए, बच्चे को ठंड लग जाएगी, ये कॉन्सेप्ट कितना ठीक है?
नहीं, देखें आपने टेम्परेचर वेरिएशन नहीं करना, आपके बाथरूम का और आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो एक हो, जब तक बच्चा जो है नहाने के बाद गर्म कपड़े पहन के खुश्क नहीं हो जाता सही तक, आपका टेम्परेचर चेंज ना हो। जो टेम्परेचर वेरिएशन है ना उससे बच्चे को बचाना है, कि पता चले कि आपका बाथरूम ज़्यादा ठंडा है और आपका कमरा गर्म है, तो ये चीज़ आप ख़वातीन को चाहिए कि जब अपने बच्चे को नहलाएं, इस नहलाना सेहत है, आप उसको गर्म कमरे में इतना ह्यूमिड कर लें, स्टीम इतनी गर्म कर लें, कमरे का और बाथरूम का टेम्परेचर सेम हो, गर्म कपड़े पहनाएं, खुश करें, और बेहतर है।
सही,
इसमें कोई
मसला नहीं है। हमने आज पूरी गुफ्तगू की इन्फेक्शन वगैरह के हवाले से, और एक चीज जो हमने देखी है स्मॉग, और उसके बाद हम एहतियाती तदाबीर पे भी चलेंगे। स्मॉग के बारे से बताइए, किस किस्म की और एलर्जीज इस वजह से हो सकती हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बड़े मुल्कों में ये काफी हद तक पाया जा रहा है।
देखिए, ये इसलिए बढ़ रहा है कि दरख्त कट रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत तादाद से। मॉडर्नाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। तो स्मॉग कॉम्बिनेशन है स्मॉग और फॉग के। अगर तो फॉग अगर आप देखें तो पानी के भाप बनने से, टेम्परेचर वेरिएशन से जो है वो एक फॉग आ जाती है, और वो फौरन जो ही सूरज निकलता है तो वो फॉग ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्मॉग एक ऐसी चीज़ है कि वो सूरज के निकलने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, और वो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी फ़ज़ा में काफ़ी देर तक जो है वो रहते हैं, और आपका विजन भी ब्लर करते हैं, आपको सांस भी नहीं सही तरह से आती, विजन ब्लर होने से एक्सीडेंट्स हैं। और स्मॉग और वो जो आपके एलर्जन्स हैं वो बड़ों के लिए भी सांस का मसला करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सांस का मसला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, और वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ एलर्जी भी है। तो मतलब इसकी तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि भाई आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं,
ज़ाती तौर पे कदम उठाएं,
ज़ाती तौर पे कदम उठाएं, लोगों को अपने घरों में जो भी उनको थोड़ा सा भी कहीं मिलती है, जगह मिलती है, लैंड है, या घर में इवन जो प्लांट पॉट्स हैं उनमें पौधे लगाएं, तो वो आपको एक अच्छी हवा, आपको एक अच्छी साफ सुथरी ऑक्सीजन देंगे।
अच्छा, चलते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। कौन सी एहतियाती तदाबीर का हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो है इन मसाइल में मुब्तला ना हों?
देखिए, प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम सब जानते हैं।
बिल्कुल,
अगर आप बच्चे का जो शुरू के दिनों में उसके हिफाजती टीके हैं ये मुकम्मल इनको करेंगे, तो इसमें आपका मोर देन 70% आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है 6 प्रिवेंटेबल वैक्सीनेशन की हैं, जिसमें डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, इन्फ्लुएंजा है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ये तमाम ऐसे हैं रेजिडेंट हैं जो बार बार हमारे बच्चों को एक्सपोज करते हैं। तो अगर ये शुरू में इनके तमाम हफाजती टीके लगा लिए जाएँ तो बच्चा जो है महफूज रख सकता है। लेकिन अगर आपने मिस कर दिए हैं, आपने नहीं कोर्स करवाया है, तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप शुरू नहीं कर सकते। आप जाएँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बच्चे को जो है वो शुरू करा दें, करा सकते हैं, और उसमें बच्चा प्रोटेक्ट रह सकता है। अब जो दूसरी चीज है वो पर्सनल हाइजीन है। अगर बच्चे का ओरल हेल्थ है, माँ की अपने ओरल हेल्थ, बच्चे के अपने हाथ पांव साफ सुथरे हैं, माँ के अपने हाथ पांव साफ सुथरे हैं, बच्चे का लबास, कपड़े वगैरह ये सब सही है, तो आप कर सकते हैं। मोर ओवर देखें, डायपर भी कई दफ़ा मदर चेंज नहीं करती,
भूल जाती है,
वो जो बहुत देर तक रखती हैं और वो एक दिन में एक डायपर करेंगी या दो डायपर करेंगी, वो बहुत रिस्की है। जो डायपर से मतलब फंगस लगता है ना, और वो फंगस स्पोर्स स्प्रेड करता है, मतलब वो हवा में के थ्रू जो है बच्चे की सांस की इन्फेक्शंस कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को साफ रखें, उसका डायपर जो है अगर आपने फेंकना भी है तो वो फौरन डिस्पोज घर से बाहर, जहाँ उसको फेंकना,
अच्छी तरह डिस्पोज करें उसे,
बिल्कुल उसको पैक करके डिस्पोज करें। ये ना हो कि आपका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो आपके घर में से ही कहीं से आ रहा हो। तो देखिए, जो प्रिवेंशन में पर्सनल और आपके इर्द गिर्द प्लेस ऑफ रेविंग की भी जो सफाई है वो भी बहुत जरूरी है। जी,
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल भी आया है और अहमद रमी साहब हमारे लिए भेजते हैं। और सर्दी के मौसम में अक्सर घरों में नज़ला वगैरह अगर किसी को हो, आया ये जरूरी है कि बच्चों को इन मरीजों से दूर रखा जाए या वो हर किसी के लिए जरूरी है?
बिल्कुल दूर रखा जाए। अच्छा। क्योंकि जितने भी ये इन्फेक्शंस हैं ये कम्युनिकेबल हैं, ये ट्रांसमिटेबल हैं। इसमें जरूरी है कि जो बड़े को अगर छींक आती है या खांस रहा है तो वो फौरन टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू नहीं है तो अपने स्लीव्स के साथ जो है वो उसको करें,
साफ करें, सफाई का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया खालिद, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जबरदस्त गुफ्तगू रही हमेशा की तरह।